درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لے حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ مدرسة کے ناظرین، پروگرام دارالافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں عطا فرمائے اور علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فان صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں بطور خاص ہم آپ کے سوالات کو شامل کرتے ہیں۔ ان دنوں میں بطور خاص جیسے ہی مسلمان الحمدللہ رمضان مبارک کی تیاریوں میں ہوتے ہیں، اور تیاریوں میں ہونا چاہیے، صحابہ کرام علیہ مردوان کا یہ انداز تھا، شعبان المعظم میں وہ اپنے اموال کی زکوٰۃ، دیگر لین دین، یہ سارے معاملات کلیئر کرنے کی کوشش کرتے تھے کہ شعبان میں یہ سب معاملات ہم کلیئر کریں اور رمضان شریف میں خالص اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اور رمضان ہے ہی مہینہ عبادت کا ہے کہ جس میں آدمی کا دن بھی عبادت میں ہی گزرتا ہے۔ جی ہاں، روزہ دار ہے تو اس کا سارا دن عبادت میں گزرتا ہے، روزے دار کا سونا بھی ان معنوں میں عبادت کے اندر ہی ہوتا ہے، روزے دار کی راتیں، یعنی دن تو روزے کی حالت میں ہیں، راتیں قیام کی صورت میں گزرتی ہیں، نماز ہے، تراویح ہے، قرآن تلاوت، یہ سب ذوق شوق الحمدللہ رمضان شریف کے مہینے میں مسلمانوں میں بکثرت ہوتے ہیں اور ہونے بھی چاہیے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے اموال زکوٰۃ کے حوالے سے ان معاملات کو دیکھتے ہوئے جس پر جو کچھ بھی لازم ہو رہا ہے، بن رہا ہے، یا جو رمضان میں ادائیگیاں کرتے ہیں، بیسک تو ہم کئی مرتبہ یہ مسئلہ عرض کر چکے ہیں کہ زکوٰۃ کا کوئی ٹائم پیریڈ ان معنوں میں کہ رمضان خاص ہے، محرم خاص ہے، ربیع الاول خاص ہے، یہ نہیں، بلکہ نصاب کا سال کب پورا ہو رہا ہے اس میں اعتبار اسی کا ہے کہ نصاب کا سال کب پورا ہو رہا ہے۔ تو نصاب کا سال جب پورا ہوگا تو اس پر وہ زکوٰۃ کا فریضہ آتا ہے۔ اس اعتبار سے اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے، کوئی پچھلے ربیع الاول میں جس کا نصاب شروع ہوا ہے تو وہ اگلے ربیع الاول تک، کسی کا محرم میں تو وہ محرم تک، کسی کا رجب میں تو وہ رجب تک، یعنی جب وہ پہلی دفعہ صاحب نصاب ہوا وہ مہینہ دیکھا جائے گا، وہ تاریخ دیکھی جائے گی، اور اس کے بعد اگلے سال کا اعتبار ہو۔ تو ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تمام احباب اپنی زکاتوں کا یوں حساب کتاب، ہاں ایڈوانس ہو سکتا ہے، مطلب کسی کا ربیع الاول میں نصاب شروع ہوا اور ابھی دو چار یعنی چھ مہینے گزرے تو رمضان آ گیا، تو اب یہ چاہتا ہے کہ میں رمضان میں ادائیگی کر دوں اور پھر آئندہ جو ربیع الاول ہے جس میں ان کو نکالنی ہی نکالنی تھی تو اس کے ایڈوانس میں رمضان کے اندر اگر کر دی گئی تو ٹھیک ہے۔ تو یوں ناظرین کرام، ان مسائل کو بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے سال کو یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح وہ بہنیں بیٹیاں جن کو شادی میں عموماً ہمارے یہاں زیورات دیے جاتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ ان چیزوں کو دیکھ لیں کہ اب ہمارا مہینہ یعنی شادی کا وہ کون سا مہینہ، کون سی تاریخ جس میں وہ صاحب نصاب ہوئی، تو اگلے پھر سال اسی کا اعتبار کرتے ہوئے ایڈوانس میں دینا، تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے رہنا یہ ٹھیک ہے، لیکن جب سال پورا ہو جائے گا اب اس کو آگے کرنا کہ اب آگے میں تھوڑی تھوڑی کر کے دیتا رہوں گا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، اب اسے نکالنا ضروری ہے۔ تو ان چیزوں کا ہمیں ناظرین کرام بہت خیال رکھنا چاہیے۔ نصاب کے حوالے سے اگر گفتگو کریں اور کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کن چیزوں پر زکوٰۃ ہے، کئی لوگ جہیز کے سامان کا پوچھ رہے ہوتے ہیں، इसके ऊपर जकात है, किराए का मकान पूछ रहे होते हैं इस पर जकात है, या वो कोई टैक्सी कार चलाते हैं और वही उनका जरिया आमदनी है तो वो पूछ रहे होते हैं इस पर जकात है। तो बेसिक अमवाले जकात हमें समझ लेने चाहिए, सोना चांदी करेंसी किसी भी तरह की करेंसी प्राइस बॉन्ड और माले तिजारत। सोना चांदी करेंसी माले तिजारत और बाद वो होंगे कि जिनके पास चराई पर जानवर होते हैं कि जो साल का बेशतर हिस्सा जिनका आम चरागाह से चरकर वो अपना गुजर बसर होता है, लेकिन जो बकायदा जानवर पालते हैं यानी जिनको वो चारा भी खुद डाल रहे हैं, जिनको बाकायदा वो पालते हैं और दूध लेना मकसद है, उनकी नस्ल चलाना मकसद है, तो ये वाले वो जानवर नहीं होते कि जिन पर ज़कात हो। हाँ, अगर ये माले तिजारत के जुमरे में आते हों, जैसे जानवर खरीदे जाते हैं इस नीयत से कि उसे कुर्बानी पे बेचना है, तो ये तिजारत की नीयत हुई, तो फिर एक जुदा मामला है। तो इसलिए बेसिक अमवाले ज़कात के एतबार से आप ये चीज़ें अपने पास नोट कर लीजिए कि आपके पास सोना कितना है, आपके पास चांदी कितनी है, करेंसी कितनी है। अगर थोड़ी थोड़ी ये चीज़ें हैं, सोना 7.5 तोले नहीं है, चांदी 52.5 तोले नहीं है, तो आप इन दोनों को मिलाइए, इन दोनों को मिलाएं, इसके साथ नकदी कैश है तो आप कैश के जरिए, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो फिर इनका निसाब 52.5 तोले चांदी के बराबर अगर पहुँच जाता है तो उस पर ज़कात के अहकामात लाजिम होंगे और वो सहब निसाब की सूरत उसकी बनेगी। अल मुख्तसर खुलासा कलाम ये है कि अगर 7.5 तोले सोना किसी के पास ना भी हो तो उसके पास सोना है लेकिन उसके साथ साथ करेंसी है, प्राइस बॉन्ड है या चांदी है या माले तिजारत है, तो फिर इनको मिलाकर देखेंगे, ये नहीं कहेंगे कि 3 तोले सोना है तो मेरे ऊपर तो ज़कात नहीं है। वो उस सूरत में 3 तोले पर ज़कात नहीं है जब आपके पास इसके अलावा हाजत से ज़ायद करेंसी नहीं है, आपके पास करेंसी नहीं है, इसी तरह प्राइस बॉन्ड वगैरह भी नहीं है, माले तिजारत भी नहीं है, चांदी भी नहीं है, सिर्फ सोना है, तो ठीक है जब तक 7.5 तोले नहीं होगा तो उस वक्त तक उस पर ज़कात के अहकामात भी नहीं होंगे। तो बहरहाल ये चीज़ें अगर समझ लेंगे, जहेज़ जैसे मैंने कहा तो जहेज़ कोई माले तिजारत नहीं है, जहेज़ कोई बेचने के लिए नहीं है, तो जहेज़ के बर्तन बिस्तर इन चीज़ों पे तो ज़कात नहीं। हाँ, जहेज के तौर पे हमारे यहाँ जैसे सोना भी दिया ही जाता है बेटियों को साथ, तो अब उसका निसाब देखा जाएगा। इसी तरह जो गाड़ी चला रहा है अपनी और वही गाड़ी उसकी आमदनी का जरिया है, तो ये गाड़ी कार बेचने के लिए नहीं है, लिहाजा जो उससे आमदनी हो रही है अगर वो खर्च हो रही है तो ज़कात कुछ भी नहीं, और अगर वो जमा हो रही है और दीगर पैसों के साथ मिलकर या खुद वो निसाब को पहुँच जाए तो फिर उन पर बहरहाल ज़कात के अहकामात आएंगे। तो कई चीज़ें जो हम अपने गुमान में समय रोते हैं कि इन पर ज़कात है, हो सकता है कि आप दारुल ताले सुन्नत से पूछें, किसी भी मुफ्ती साहब से पूछेंगे तो वो आपको बताएंगे कि इन पर नहीं है, और कई चीज़ें ऐसी होंगी कि जिनको हम अपने गुमान के मुताबिक समझते हैं कि ज़कात नहीं है लेकिन उसका बरक्स मामला होता है कि उन पर ज़कात हो रही होती। तो असल मामला दीनी और शरी रहनुमाई का है। आज के हमारे मेहमान मुफ्ती सजाद साहब हजरत खुश आमदीद मरहबा कहते हैं, कैसे हैं आप? ठीक है माशाल्लाह। नाज़रीन मुंतज़िर हैं आपके, तो बढ़ते हैं सवालात की तरफ, देखते हैं क्या।
मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ पटेल, मैं मुफ्ती साहब से ये सवाल करना चाहता हूँ, अगर कोई नमाज बंदा तहजूद की पढ़ता है 6, 8, 12, लेकिन मैंने सुना है किसी से कि हर रकत के अंदर 3 दफा सूरत इखलास पढ़ी जाए, क्या ये जरूरी है या कोई भी सूरत अपनी तरफ से पढ़ सकता है हर रकत में?
जी, 3 दफा सूरह इखलास ही तहज्जुद में पढ़नी, क्या कहते हैं?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज्जुद हो या कोई भी नवाफिल हो उसमें कोई भी सूरत पढ़ना लाजिम नहीं है, और सूरह इखलास के बारे में आमतौर पर मशहूर है कि तहज्जुद में पहली रकात में 3 दफा फिर दूसरी में 2 दफा, तो शरी एतबार से ये लाजिम नहीं है। आप कुरान पाक की कोई सी भी सूरत पढ़ सकते हैं तो आपकी तहज्जुद अदा हो जाएगी।
ठीक है, कोई सी भी सूरत पढ़ दें, और अगर 3 दफा पढ़ते हैं तो ये भी पढ़ सकते हैं?
जी, 3 दफा अगर सूरह इखलास पढ़ते हैं तो भी पढ़ना जायज है, लेकिन इसको लाजिम समझना दुरुस्त नहीं।
ठीक है, लाजिम यानी कोई आम तौर पे जिसे हम देखते हैं कि आम आवाम है, वो सुन्नत भी अगर अपनी पढ़ेंगे तो कुल वल्लाह से पढ़ेंगे, वो सूरह इखलास से ही पढ़ेंगे, वो फर्ज में भी सूरह इखलास पढ़ेंगे, यानी यूं कहें कि बगैर किसी रुके हुए जो पहली सूरत जबान पर आती बे इख्तियार आती है तो वो सूरह इखलास ही होती है कि आमतौर पर।
असल में एक तो ये है कि इसको ज्यादा पढ़ा जाता है और बाद लोगों को ज्यादा जो सूरतें याद भी नहीं होती हैं,
ठीक है,
तो वो सूरह इखलास आसान भी है, जबान पर भी यूँ समझे उसकी रवानी है, और दूसरी सूरतें आती भी नहीं होती हैं बाज को, तो इस एतबार से सूरह इखलास जो है वो यूँ समझें कि जल्दी भी अदायगी हो जाती है और जबान पर भी उसकी रवानी आसान है, तो इस एतबार से पढ़ दी जाती है। लेकिन फर्जों में एक ही सूरत की तकरार ना की जाए,
फर्जों
और फर्जों में सुन्नत और नवाफिल में अगर एक सूरत की तकरार तमाम रकातों में या एक रकात में दो दो दफा तीन दफा पढ़ते हैं या दूसरी रकात में भी उसी सूरत को पढ़ते हैं तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है।
नहीं,
फर्जों में ये कोशिश करें कि सूरतें मुख्तलिफ
मुख्तलिफ हो, लेकिन फर्जों में भी किसी ने एक ही पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी,
नमाज हो जाए,
नमाज उसने,
लेकिन ऐसा करना जो है वो मकरूह है।
ठीक है, आपने कहा 6 रकत 8 रकत 12 रकत तो हैं, कितनी रखते हैं?
कम अज कम जो वो
दो,
है दो, यानी कम अज कम अगर दो अदा करेंगे तो तहज्जुद अदा हो जाएगी, और बाकी अल्लाह पाक जितनी तौफीक दे, 6 पढ़ें 8 पढ़ें 12 पढ़ें तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं।
जी बढ़ते हैं मजीद नाज़रीन के सवाल।
बैंक की तरफ से कर्जा दिया जाता है 50,000 रुपए पे, वो तकरीबन 65,000 रुपए वसूल कर रहे हैं, तो क्या जरूरत पूरी करने के लिए वो बैंक से कर्जा लेना जायज है?
जी 50/65,
नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर वो कर्जा जो नफा लेकर है वो सूद होता है, तो बैंक से जो कर्जा लिया और उस पर जो है वो ज्यादा देना पड़ेगा, नफा देना पड़ेगा, तो ये सूदी कर्जा है, ऐसा कर्जा ना बैंक से लेना जायज है ना किसी से इनफरादी तौर पर, यानी किसी शख्स से भी लेना जायज नहीं है, बैंक से भी लेना जायज नहीं है, और लेने वाला देने वाला दोनों गुनाहगार हैं, क्योंकि इसको सूद कहा गया है हदीस पाक में, तो इसलिए इस तरह के कर्जे से हर मुसलमान को बचना चाहिए कि जिस कर्जे में ज्यादा देना पड़े या कोई सा भी नफा जो है वो उस देने वाले को देना पड़े तो शरी एतबार से वो सूद हो जाए।
अच्छा, आमतौर पर लोग तो ये कहते हैं कि इसके बगैर तो मिल ही नहीं रहा, तो हम क्या करें और लेना भी है, दोनों तरह की बातें। बाज़ औक़ात तो आम जो अपनी ख्वाहिशात हैं या शादी एक चाहते हैं कि हम अपने उसके मुताबिक करें जिसमें ठीक ठाक नमोदो नमाइश भी है, दिखलावा भी है, या अपनी बात रखना, अपनी क्या उसको कहें, नाक रखना कहेंगे, क्या कहेंगे, तो क्या कहते हैं आप?
यानी दिखावे के लिए, नमोदो नुमाइश के लिए, शोहरत के लिए, या ये कि शादी है बच्चों को ज्यादा जहेज देना है, या शादी है और बड़ा खर्चा करना है, तो इसके लिए तो सूद लेने की शरण इजाजत ही नहीं है, और सूद तो वैसे ही गुनाह वाली बात है। अलबत्ता फुकहा ने इंतहाई नागुजीर हालात में कि जब किसी पर कर्जा हो इतना कि अब नहीं देगा तो जो कर्ज खा हैं वो जलील करेंगे, जेल में डाल देंगे, ऐसी यानी जो,
और फिर उनके अपने बच्चों के मजे, उनको खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे,
खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे, तो ऐसी नागुजीर जब हालात हों तो उसमें लेने वाले को तो गुनाह नहीं होगा, तो लेकिन आम तौर पर ऐसे हालात होते नहीं, तो इसलिए सूदी कर्ज से बाहर सूरत अपने आप को बचाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग देते नहीं हैं, बहुत सारे मुसलमान देते भी हैं
कर्जा,
कर्जा देते भी हैं, अलबत्ता जो है वो अदायगी में तवज्जो करनी चाहिए। ना देने का जो एक सबब होता है लोगों का वो ये होता है कि जब अदा करने का वक्त आता है तो बावजूद वुसत या यानी गुंजाइश करके या अपनी ऐसी चीजें जो बिल्कुल जरूरत वाली नहीं है उनको बेच बाच कर कर्ज अदा किया जा सकता है, या थोड़ी गुंजाइश करके अपने खाने पीने पहनने में थोड़ी तंगी करके कर्ज की अदायगी की जा सकती है, लेकिन लोग अपनी तरफ से जो है वो तंगी बर्दाश्त करना जो है वो पसंद नहीं करते हैं। इसके मुकाबले में कर्ज देने वाले को चिखवाना, उसको चक्कर लगवाना, इसको ज्यादा पसंद करते हैं। तो जिसकी वजह से लोग जो है वो कर्जा देने से गुरेज करते हैं, वरना कर्जे मिल जाते हैं। और अगर कर्जा नहीं मिल रहा तो अपनी कोई ऐसी चीज बेच दें कि जो आपकी हाजत और जरूरत से ज्यादा हो, जिसका कोई फायदा नहीं है। बिलफर्ज आपकी जरी जमीन है और उससे आपको इतनी गुजर बसर भी नहीं है, तो आप उसको बेचकर अपनी हाजत पूरी कर सकते हैं। घर में ऐसा सामान है कि जिसको बेचकर आप अपनी इस हाजत को पूरा कर सकते हैं, तो ये करना पड़ेगा बनिस्बत इसके कि आप सूदी कर्ज लें। तो सूदी कर्ज लेना ये इंतहाई, यानी अपने आप को एक कुएं में डालने वाली बात है। सूद ऐसा ही है, जब बंदे को लपेट लेता है, चारों तरफ से घेर लेता है,
आदमी इसी लालच में
तो
पड़ा
फिर
निकल
इसमें निकल नहीं सकता है और
लेता।
मजीद फंसता 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 जाता है। क्यों ना हो कि जब कुरान पाक में इसको अल्लाह पाक से जंग करार दिया गया, तो जो जो काम अल्लाह और उसके रसूल से जंग हो, तो उसमें कोई कैसे कामयाब हो सकता है। तो लिहाजा अपने आप को बहर सूरत सूदी कर्जे से बचाना जरूरी है।
जी नादरीन किराम, इन तमाम चीजों का ख्याल रखना बहुत अहम जरूरी। सूदी कर्जों में भी अपने आप को मुबतला नहीं करना चाहिए। यानी आम नॉर्मल भी कर्ज है और आपको ऐसी कोई हाजत उस तौर पर नहीं है कि उसके बगैर गुजर बसर हो सकता है, तो नॉर्मल कर्जे में भी अपने आप को नहीं जकड़ना चाहिए। क्या ख्याल आप कहते हैं कि नहीं, बात चीजें ऐसी होती हैं कि नॉर्मल भी कर्ज किसी से लेना है। हमारे मुआशरे में कर्ज वाली नेकी कम से कम होती जा रही है। कर्ज किसी से हम मांगे तो शायद वो सामने वाला वैसे इनकार कर देता है, मेरे पास है ही नहीं है, मैं तो खुद भाई पता नहीं कैसे इस महंगाई के दौर में मांग भी खा रहा हूँ। मतलब मांगने का ना भी कहे, लेकिन होता यही है कि गुजर बसर दाल रोटी कैसे चल रही है। हालांकि पैसे भले उसके पास मौजूद हो, लेकिन वो भी जानता है कि सामने वाले को अभी इसकी अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करना चाह रहा है और ये मेरा पैसा इस्तेमाल तो करेगा। आज बड़ी लजाजत के साथ, बड़ी नरमी के साथ, चाहे वो नॉर्मल कर्ज है या मार्केट के एतबार से देखें किसी से सामान उठवा लेना, यानी माल ले लेना, अरे दे लेंगे भाई ये तो आ जाएगा। अब जब यकदम ऐसे क्राइसिस के मामलात आए और मईशत के हवाले से गुफ्तगू भी आम हुई, तो इसकी आड़ में कई लोग फायदा भी उठा जाते हैं। अब जिसने किसी के लाखों रुपए वापसी करने, सवाल है कि उनके ऊपर जो है ना वो कोई बात किसी तरह किया है, वो बेचारा मिन्नतें कर करके। अच्छा, बज़ाहिर बाज़ूकात किसी का माल जो दबाने वाले या माल अपने पास रखने वाले, वज़ाकत में भी सही है, भी नमाज रोजे का एहतमाम करने वाले वज़ाकत में भी अच्छे नजर आने वाले, लेकिन माली तौर पर जहाँ मामला होता है तो वहाँ इस तरह के कई अफराद होते हैं कि जो इन चीजों में मुबतला हो जाते हैं, और फिर उनकी वजह से लोग कितने दीन से भी दूर हो रहे होते हैं। और दीन के हवाले से भी, यार ये बंदा, इसको हम नमाज भी पाबंदी से पढ़ते हुए देख रहे हैं, इस बंदे को ये भी करते हुए देख रहे हैं, साथ इसका मामला देखें तो ये लोगों के पैसे दबा के बैठा हुआ है।
इसमें दो तीन बातें जो है वो मद्देनजर हर मुसलमान को रखनी जरूरी है। पहली बात तो ये है कि कर्ज देना ये सवाब का काम है, और जो कर्ज देने का सवाब है ये सदका देने के सवाब से ज्यादा है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जन्नत में ये मुशाहदा फरमाया कि वहां पे कर्ज का सवाब 18 गुना और सदके का सवाब जो है वो 10 गुना तहरीर था। तो हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहि सलाम से इरशाद फरमाया कि सदके का सवाब कम है और कर्ज का सवाब ज्यादा है। तो हजरत जिब्रील अलैहि सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो कर्ज लेता है वो तो अपनी हाजत और जरूरत की वजह से लेता है, तो अब जो मुसलमान की हाजत के वक्त तो उसकी हाजत रवाई करता है तो इसका सवाब ज्यादा है। जबकि जो सदका लेता है इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो हाजतमंद हो। कर्ज हाजत के वक्त लिया जाता है, सदका जो है वो जो दे रहा है और जो सदका ले रहा है ये जरूरी नहीं कि लेने वाला हाजत के वक्त ही सदका ले।
ठीक है,
तो इस
निकालने वाले को भी अपने तौर पे
जी
खुशी मिली, उसने सदका निकाल
इस
दिया।
जी इस एतबार से चूंकि मुसलमान हाजत के वक्त कर्ज लेता है और जो मुसलमान की हाजत को पूरा करता है तो उसका ज्यादा सवाब, 18 गुना सवाब।
माशाल्लाह,
तो इस हदीस पाक से ये पता चला कि कर्जा जो है वो हाजत के वक्त लेना चाहिए, और हाजत भी ऐसी कि जिसमें अपने जो है वो नफ्स की ख्वाहिशात को पूरा ना करना हो। बिलफर्ज आप जैसे मिसाल माशरे में देख ले, उम्रे पर जाना है, अब उम्रे पर जाना है कोशिश ये हो रही है कि पूरी फैमिली को ले जाऊं एक साथ। अब पैसे एक बंदे के हैं, साथ लेकर जा रहे हैं चार आदमी,
ठीक है
तो उसके लिए कर्ज ही लेगा।
जी,
हालांकि उम्रा न फर्ज है न वाजिब है, अगर मन्नत नहीं मानी है तो वाजिब भी नहीं, एक सुन्नत और एक यानी सवाब वाला काम है। तो अब इसकी अदायगी के लिए कर्जा लेकर जाना, अगरचे के जाना जायज है, लेकिन फिर ये भी देख लेना कि इसको अदा भी करना है, और अदायगी के वक्त जो है जो कर्जा दे उसको ये तंग करे, उसको रुलाए, तो ये जरूरत वाला हाजत वाला कर्जा नहीं। अच्छा, इसी तरह शादी ब्याह की आपने मिसालें दी हैं कि अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए, दिखावे के लिए, मुआशरे में अपना नाम रखने के लिए, वाह वाह के लिए जो है वो कर्ज ले लिया, हालांकि इसको ये नहीं पता कि इसको अदा भी करना है। अच्छा, वही लजाजत के साथ 1 साल का, 5 महीने का, 6 महीने का टाइम, तो लाखों रुपए अगर ये ले रहा है तो इसको ये भी तो समझना चाहिए कि ये इसकी अदायगी कब करेगा। तो हाजत के वक्त लिया जाए। और फिर तीसरी बात ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान याद रखा जाए, मतलुल गनी है जुल्म, के गनी का कर्ज की अदायगी में टाल मटोल करना ये जुल्म है। तो हाजत के वक्त ले, और अगर वुसत है अपनी जो है वो चीजों को भी भले बेच कर अदा कर सकता है, तो अब अगर ये टाल मटोल कर रहा है तो ये कर्ज देने वाले पर गोया के जुल्म कर रहा है। तो जब इन चीजों को हम मद्देनजर रखेंगे कि हमें जुल्म नहीं करना, अदायगी में जल्दी करनी है, हाजत के वक्त लेना है, और हाजत कौन सी है कि सिर्फ जो है वो खाना पीना है, सैर सपाटा है, या कोई आप बिलफर्ज रमजान आ गया, आप कोई बोले कि मुझे नफली सदके करने हैं, मुझे जो है 200 आदमियों को जो है वो राशन देना है,
इफ्तार करवाना है
इफ्तार करवाना है, तो
और
अब
ले
उसके
कर्जा।
लिए जो है वो कर्ज ले रहा है, तो उसको शरीयत ने इस बात का पाबंद ही नहीं किया। तो फिर इस तरह के जो लोग होते हैं, यानी जो दीनी कामों में बिला वजह कर्ज लेकर दीनी कामों में खर्च करते हैं और सामने वाले पर एहसान कर रहे होते हैं, यार मैंने तो इतनी बड़ी नेकी की है, लोगों को इफ्तार करवाया,
अब आप भी
आप
नियत कर लो,
जी
यानी आप उसी से एक तरह के बाद में सवाल शुरू हो जाते हैं कि भाई आप या तो आप माफी की तरफ आएं या आप छोड़ने वाली बात करें। तो खैर, नेकी वाली आपने तो बात की है, हो सकता है मुआशरे में ऐसे लोग भी हों कि कर्जा लेकर नेकी की तरफ खर्च करने वाले, लेकिन नादरीन इकराम बकसरत जो अफराद है अपने मामलात के अंदर वो ले लेते हैं, अपना बिजनेस भी चला रहे होते हैं, कई ऐसे को पता चला कि खुफिया प्रॉपर्टियां लेके छोड़ दी, पैसा किसी का उधर प्रॉपर्टी छोड़ दी, और इनको अभी टाल मटोल हो रहा है, नहीं देखी जाएगी देखी जाएगी। वो किस मानों में कि प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है, उसका कर्जा भले जहां से जाए उसको तो उतना ही देने, वो बेचारा मिन्नतें कर रहा है। तो ऐसी मिसालें कई जगहों पर हैं, ये नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने एक मरतबा जनाजा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, और ये आप क्यों पूछते थे, ये मेरे और आपकी तालीम के लिए कि हम किसी का माली हक तो नहीं अपने ऊपर कोई ऐसा रख रख रहे। फरमाते थे कि इस पर कर्जा है, जी कर्जा है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम इसकी नमाज जनाजा पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। यानी हुजूर इस्लाम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ने से मना फरमा दिया। हजरत मौला कायनात मुश्किल कुशा रदी अल्लाह को ताला नो आगे बढ़े और उन्होंने अपने जिम्मे कर्ज लिया उन उस मैयत का, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ाई। ये मेरे और आप सबके लिए समझने के लिए ये बात काफी होनी चाहिए। तो जिसके पास वुसत है वो कर्ज अदा करे, और जो वाकई तंगदस्त हो गया है तो फिर शरीयत कर्ज खाओं को कहती है कि इन्हें मोहलत दी जाए, इन्हें मोहलत दी जाए। लेकिन इसमें भी ऐसा अंदाज नहीं अपनाना चाहिए कि जो कर्ज देने वाला है उस बेचारे को अब हर एतबार से जिल्लत का सामना करना पड़े, मिन्नत समाजत का सामना करना पड़े। तो इन दोनों चीजों का ख्याल रखेंगे और हत्तन इम्कान अपने आप को जब सवालात से इन चीज़ों से बचाएंगे तो ही आफियत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजा साहब जब वो सवालात करने से आपने मना फरमाया कि ऐसे कोई सवाल करे किसी से मांग ले, तो आप उन्हें बाजार का रुख करवाते थे कि अपना कारोबार करे या कुछ मजदूरी करे कमाए। तो साहबा कहते हैं हम इतने मोहतात हो गए कि अब अगर सवाल करने में अगर सवारी के ऊपर कोई बैठा है और उसकी छड़ी गिर गई तो वो उठाने के लिए किसी और को सवाल नहीं करते थे, कहते थे कि खुद ही उतरे सवारी से अपनी वो छड़ी उठाई और फिर दोबारा सवार, क्योंकि ये सवाल भी उसी जुमरे में ना चला जाए। ये बातें हम सबको समझनी चाहिए। अल्लाह पाक आफियत सलामती वाला मामला फरमाए, और जो कर्जदार हैं बारे कर्ज से उनको सुखदोश फरमाए, और जिन लोगों की कहीं रकमें डूबी हुई हैं फंसी हुई हैं अल्लाह पाक ऐसे असबाब पैदा फरमाए कि बआसानी रकमें उनकी वापस मिल जाए। मजीद बढ़ते हैं आपके सवाल की।
शाकिर रजा तारी मलिर से, मुफ्ती साहब से मेरा ये सवाल है कि एक शख्स ने सदके की मुर्गी मुर्गी वाले के दुकान पर ज़बह करने के लिए ले गए, उनको कहा कि ये ज़बह करके थे, मैं काम से आ रहा हूँ, किसी और काम से चले गए, तो मुर्गी वाले ने वो ज़बह कर ली। उनके जो कारीगर थे मुर्गी वाले की दुकान पर, उसने 2 या 3 किलो वो मुर्गी सेल कर दी, बेच दी। फिर उस्ताद को पता चला, कान वाले को जिसने ज़बह की थी, उसने अपनी दुकान से मुर्गी लेकर उसको काट के उसमें से वो 2-3 किलो मिलाकर उसको दे दी, क्या ऐसा करना सही है?
कितना निकला था गोश्त उस मुर्गी में भाई, 2-3 किलो तो सेल हो गया है, या ज्यादा मुर्गियां होंगी?
1 किलो, 1 किलो
है,
1 किलो
कुछ सेल हो गया और कुछ उसमें, बहरहाल आप क्या फरमाते हैं?
देखिए, जिसकी वो मुर्गी थी उसने उसका गोश्त सदका करना था, तो वो उसकी मिल्कियत थी। अब जो दुकानदार के कारीगरों ने या दुकानदार ने उसको बेच दिया, तो मालिक की इजाज़त के बगैर ये बेचना जायज़ नहीं था, और जो उन्होंने बेचा तो जाहिर है कि उसका तावान उन पर लाजिम था, कि एक मुसलमान की मिल्कियत जो है वो उन्होंने ख़त्म कर दी बेच कर, तो अब उन पर इसका तावान लाजिम था, तो जितना उन्होंने बेचा उतना मुर्गी वाले ने इनको, जिसकी असल मुर्गी थी उसको दे दिया, तो अब ये वो वाला गोश्त जो इसको बतौर तावान हासिल हुआ है उसको अब ये सदका कर, तो ये जो इसने सदका करने की नियत की थी, तो अब इसको जो गोश्त हासिल हुआ उसको ये सदका कर दे, तो इसकी इसका सदका मुकम्मल हो जाएगा और जो सदके का सवाब है वो इसको हासिल हो जाएगा। अलबत्ता जिसने गलत काम किया, यानी मुर्गी वाले ने जो ज़बह करने वाला था, वो अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा भी करे, गोश्त तो दे दिया लेकिन गलत तसरुफ मुसलमान के माल में उसकी इजाज़त के बगैर जो उसने किया उस पर अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा भी।
अब उसको पता हो नहीं पता हो, जैसे ही इनके सवाल से जाहिर है मालिक को ये पता था और कारीगरों को पता ही नहीं, या कारीगरों ने वैसे ही बेच दिया उसको?
अगर पता नहीं था और दे दिया तो तब गुनाह नहीं होगा,
ठीक,
लेकिन तावान तो इसको देना पड़ेगा,
ठीक है।
और अगर जानबूझकर जो है वो बेच दिया है, पता था, तो जिसने ऐसा किया तो उस पर लाजिम है कि वो तौबा करे।
कुछ मैसेज भी शामिल करते हैं। सवाल है कि मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ है पिछले साल, 2 बहनें हैं, हमारी अम्मी और हमारी दादी जान हैं, और उनके भी 5 बच्चे हैं, हमारा दादा जान नहीं है, तो दादा जान की विरासत में क्या हमारे लिए हमारी अम्मी का हिस्सा होगा, और दादी जान हयात हैं और हमारे अप्पू हयात नहीं है। बहरहाल सवाल है एक, लेकिन खुलासा जो इसका कि दादा पहले फौत हो गए, अब इनके वालिद फौत हुए, दादी जिंदा हैं। आमतौर पर यही होता है कि शोहर फौत हो तो कहते हैं कि भाई सब कुछ बीवी का है, अब नीचे जो इन्होंने कहा कि हमारी वालदा का भी दादा की विरासत में से कुछ आएगा?
अगर दादा का इंतकाल वालिद के इंतकाल से पहले हुआ है,
ठीक है,
तो इस सूरत में इनके वालिद का दादा की जायदाद में, दादा के तरके में हिस्सा होगा,
ठीक है।
अब जो इनके वालिद के इंतकाल हुआ तो वालिद का जो तरका था उसमें इनकी वालदा का भी हिस्सा होगा और इनकी दादी का भी हिस्सा होगा, लेकिन जो दादा का तरका है उसमें इनकी दादी का तो हिस्सा होगा लेकिन इनकी वालदा का हिस्सा नहीं होगा, कि इनकी वालदा उनके वरसा में शामिल नहीं। इनके वालिद चूंकि उनके बेटे हैं और उनका पहले से इंतकाल हो गया, तो वो अपने बाप के तरके से बतौर बेटा हिस्सा पाएंगे, और इनकी अम्मी जो है वो इनके वालिद से बतौर बीवी जो हिस्सा बनता है वो हिस्सा पाए, तो इनके वालिद से इनकी वालदा का हिस्सा है, इनके दादा की जायदाद से इनकी वालदा का हिस्सा नहीं।
हाँ, दादा का हिस्सा जो वालिद को आएगा और उनमें से इनको आएगा,
जी,
तो मसला यूं ही समझ रहा होगा नाज़रीन इकराम। अब इस तरह के जो मसाइल होते हैं उसके लिए मेरा मशवरा यही कि दारुल ताले सुन्नत में बाकायदा आप विजिट फरमाएं, और या अपना एक सवाल लिखकर भेज दे। सवाल में दादा का इंतकाल कब हुआ, वो सन और इस एतबार से फर्क जरूर रहे कि मुफ्ती साहब ये पहचान जाए उस सवाल से कि दादा पहले फौत हुए थे, वालिद बाद में फौत हुए, फिर कौन बाद में फौत हुआ। तो इनमें जितना भी तवील होता जाता है तो मसाइल उतने ही एक तरह के गंभीर भी होते हैं, मुफ्ती के लिए हल करना भी थोड़ा सा वो मुश्किल मराइल में चला जाता है। लेकिन जाहिर है हम तो हल तो करते हैं, और कभी कभी 17-17 मैयतें हो जाती हैं। जी हाँ, आपको सुनने में वो लग रहा होगा क्या सजा साहब, यानी कितने कितने बुतून का मसला आ जाता है, और यानी 17 मैयतों का इंतकाल हो गया और अब विरासत तरका वो तकसीम हो रहा है। तो जाहिर ये भी एक खौफ खुदा की अलामत ही कहूंगा, दिल में एक ऐसी आय कि जिसका हिस्सा बनता है हम उस तक भी पहुंचाएंगे। तो फिर वो चलता 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 बाज औकात तो यानी उनके अगर पूरी डिटेल लिखी जाए तो 100 से ज्यादा अफराद बन रहे होते हैं, उनके अपने बच्चे, फिर उनके बच्चे, फिर ये, तो इतने अफराद बन जाते हैं और घंटों लगते हैं उस मसले को हल करने में, उसकी तफसील और डिटेल लेने में। तो ये हल बहरहाल जल्दी कर लेने चाहिए, लेकिन जो आपका खुलासा यही है कि आप दारुल अहले सुन्नत से राबता करें, हर एक को उसका हिस्सा बता दिया जाएगा। दादा की विरासत से उनके बच्चों का यानी आपके वालिद का तो हिस्सा है, तो जो आपके वालिद को हिस्सा मिलेगा उसमें आपका भी है और आपकी वालदा का भी हिस्सा है, लेकिन ये कितना होगा ये दारुल अहले सुन्नत से बराह रास्त आप राबता फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल अहले सुन्नत की कराची शहर के अंदर शाखें मौजूद हैं, कंजुल ईमान मस्जिद दारुल अहले सुन्नत है, इसी तरह बुखारी मस्जिद में वहाँ पर नूरुल इरफान दारुल अहले सुन्नत है, जामे मस्जिद अक्सा सदर में दारुल अहले सुन्नत है, और जामिया मस्जिद हबीबिया दोराजी में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद है, कोरंगी में भी दारुल अहले सुन्नत रजा मस्जिद में है, और फैज़ मदीना न्यू कराची में ये दारुल अहले सुन्नत, ये कराची शहर के अंदर है। इस तरह बड़े बड़े शहरों में लाहौर में 2 दारुल अहले सुन्नत हैं, फैसलाबाद में भी हैं, सरगोधा में भी हैं, मुल्तान में भी हैं, और रावलपिंडी में भी हैं, गुजरावाला में भी हैं, हैदराबाद में भी हैं, तकरीबन मेरा ख्याल सारे शहर हो चुके हैं
जी।
तो इन शहरों में दारुल अहले सुन्नत हैं, आप पहुंचिए और अपने सवालात के आप जवाब ले सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ नाज़रीन के वीडियो सवालात की तरफ।
मेरा नाम मुश्ताक कादरी है और मेरा मसला ये है, मस्जिद के अंदर जमात हो रही है, जमात के अंदर लोग सफों के अंदर सज्दे की जगह पर रुमाल बिछा देते हैं, रुमाल बिछा के ये कैसा है, सही है, जायज है या नहीं है? और दूसरा मसला ये है कि नाक से पानी निकल रहा है जमात के अंदर, रुमाल लेके जेब से साफ कर लिया बोला पानी साफ हो जाएगा, तो ये मसला कैसा है? लोग बोल रहे सही है।
एक तो रुमाल इन्होंने कहा तो चले इसको थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। रुमाल हाथ वैसे आमतौर पर लोग रखते हैं जेब में, कई लोग होते हैं कि वो बाकायदा उसको पूरा अपना वजू का पानी ये वो खुश किया और उसको आके सजा। अच्छा, कोई सजदे की जगह पे, कोई सजदे के आगे भी पहली सफ खाली है तो उसमें रख देते हैं, यानी खुश करने के लिए ये रख दिया जाता है। आप इस अमल को किस नज़र से देखते हैं, शरी तौर पर क्या है, और साथ ये जो
खुश करने के लिए तो मस्जिद को बचाना चाहिए कि मस्जिद ये जगह कपड़े खुश करने की जगह नहीं। हाँ, अगर बाज लोग इसलिए रखते हैं कि दरी चटाई वो आलूदा होती है, बास को जो है वो कुछ डस्ट से मसाइल होते हैं, एलर्जी वगैरह होती है, तो बाज औकात जो है वो सफ़ों से भी बदबू आ रही होती है, तो उससे बचने के लिए भी लोग जो है वो रुमाल वगैरह अपना बिछाते हैं। तो अगर इस मकसद के लिए रुमाल बिछाया है और ज़िमनन वो खुश्क भी हो रहा है तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं। बाज लोगों की वाकई मजबूरी होती है क्योंकि मस्जिद में इतना लोगों का आना जाना,
कालीन वगैरह होते हैं,
कालीन में डस्ट होती है, बाज लोगों को एलर्जी भी होती है, तो अमूमन तो लोग इसलिए भी करते हैं कि उस डस्ट से या जो एक हीक सी आ रही होती है उससे बचने के लिए रख देते हैं, तो इसमें शरण कोई हर्ज वाली बात नहीं।
अब अगर साफ सुथरा वो रुमाल है और उसकी वजह से मजीद दरी भी खराब ना हो रही हो
जी,
और फिर आप अपने उस तहफ़ुज़ के लिए रखते हैं तो ठीक है, इससे कोई शिकायत भी लोगों को नहीं होती। ये जो सूरत साइल कह रहे हैं ना, ये एक गिन वाली सूरत होती है, नखाज वाली।
गिन वाली सूरत में ये कि अगर रुमाल ऐसा है जिसे आप नाक साफ करते हैं वो आपने
आपने
सामने रख दिया है तो इससे खुद यानी एक तो ये है कि मस्जिद का अदब है
जी हाँ,
कि आप ऐसा रुमाल अपने बेड पर ना रखें, अपने मेहमानों के सामने ना रखें, तो आपने अल्लाह के घर में जो है वो निकाल कर नमाज के सामने जो है वो बाहर रख दिया, تو یہ مسجد کے ادب کے بھی خلاف ہے اور اخلاقیات کے بھی خلاف ہے.
ٹھیک,
تو یہ دونوں پہلوؤں کے اعتبار سے یہ ناپسندیدہ ہے اگر اس طور پر ہے. اور جو دوسرا پہلو ہے وہ میں نے عرض کر دیا. اب جو ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی کو نزلہ زکام ہے, رومال جیب سے نکال لیتا ہے اور جو ہے ناک صاف کرتا ہے اور پھر رکھ لیتا ہے, تو یہ عمل کثیر کی صورت جو ہے وہ ہو جائے گی. یعنی ایسا عمل کہ جس سے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, تو ایسا عمل عمل کثیر ہوتا ہے, یہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے. البتہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ رومال جو ہے وہ اپنے کندھوں پر رکھے لیکن صدل کی صورت نہ بنے, جیسے رومال کو جو ہے وہ ایک اس کا سرا ادھر رکھ دیا اور ایک جو ہے وہ نیچے لٹک رہا ہے. تو اب اس صورت میں اگر جو ہے وہ ناک سے پانی بہتا ہے اور یہ اس رومال کو اوپر کر کے ناک کے سامنے کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور اگر رومال نہیں بھی ہے, رومال نہیں ہے, ناک سے پانی آیا, تو اس کو مسجد کی دری پر نہ گرنے دے بلکہ اپنے جو ہے وہ بازو میں یا اپنے کپڑوں پر لے لے. یہ ناپاک نہیں, اگرچہ گھن والی چیز ہے لیکن ناپاک نہیں. تو جو چیز جس چیز سے آپ گھن کھا رہے ہیں تو اس سے مسجد کی دری اور چٹائی کو بھی بچائیں کہ اس سے لوگ زیادہ گھن کھائیں گے, تو اپنے اوپر لے لیں لیکن مسجد کی دری پر یا مسجد کے فرش پر اس کو نہ گرنے دے, تو اس سے نماز نہ ٹوٹے گی اور نہ ہی نماز میں کوئی ہار جائے گا.
جی, کچھ میسیج بھی ہیں, کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 4 سال کا ہو گیا, ابھی تک عقیقہ نہیں کیا, عقیقہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا دو ہی کرنے ہوں گے یا کچھ اور, مطلب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ 2 بکرے کریں یا 1 بکرے سے بھی عقیقہ ہو جائے گا.
1 بکرے سے بھی عقیقہ ہو جائے گا اور 2 کرنا مستحب ہے.
زیادہ اچھی بات ہے, طاقت موجود ہے تو 2 ہی کریں.
جی,
3 بھائی بہنیں ان کی ایک ساتھ شادی ہو سکتی ہے, 1 بھائی ہے 2 بہنیں ہیں, سنا ہے کہ 3 ایک ساتھ نہیں کر سکتے.
بالکل ہو سکتی ہے, 3 کی بھی ایک ساتھ ہو سکتی ہے, 4 کی بھی ایک ساتھ ہو سکتی ہے, شرن اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے, نہ ناجائز ہے نہ گناہ ہے.
اس کو ایسے بدشگونی لے لیتے ہیں,
اس کو لوگ بدشگونی کے طور پر, جب 2 بہنوں کی شادی ہو بالخصوص اس کو بھی بدشگونی کے طور پر لیتے ہیں. اب بدشگونی لینا ناجائز اور گناہ ہے, اور اس سے تو اچھی فال ہونی چاہیے کہ جو ہے وہ نکاح کی سنت ادا ہوئی ہے اور 3-4 کی ایک ساتھ ایک گھر میں ہوئی ہے, تو یہ گویا کہ ایک نہیں بلکہ 3-4 سنتیں جو ہے وہ 3-4 لوگوں نے ادا کی ہیں, تو یہ خوشی کی بات ہے. اس میں بدشگونی کا پہلو نہیں لینا چاہیے بلکہ اس سے اچھی فال لینی چاہیے.
صحیح. نابالغ بچہ اذان دے سکتا ہے؟
نابالغ بچہ اذان نہیں دے سکتا, اس کی اذان دہرائی جائے گی.
اگر سمجھدار نابالغ بچہ ہے,
اگر سمجھدار ہے تو اس کی ہو جائے گی, اور بالکل نہ سمجھ ہے تو اس کی اذان کو دہرایا جائے,
اس کی اذان کو. ٹھیک ہے. ناظرین کرام, اپنے پروگرام جو ملاحظہ فرما, اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہم سب کے علم میں وہ برکتیں عطا فرمائے, اور جو علم سیکھتے ہی رہنا چاہیے, لیکن ظاہر ہے یہ ایک خاص, اس کو کلاس کہہ لیں, دار الطرح سنت کا پروگرام 40 منٹ کا ایک دورانیہ ہوتا ہے, لیکن اس میں کئی طرح کے سوال کوشش کی جاتی ہے, کہیں رہ بھی جاتے ہیں تو آپ دار الطرح سنت سے براہ راست بھی فون پر بھی ان مسائل کو آپ بہرحال پوچھ سکتے ہیں, یا نمبر اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں اور اس نمبر کو اپنے پاس آپ سیو کریں. 10 بجے سے لے کر 4 بجے تک دن کے اندر آپ کال کر کے براہ راست بھی مسائل پوچھ سکتے ہیں. اللہ مجھ کی توفیق دے. آمین بجاہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
ہادیو رہنما ہمارے غلاما, ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ, پوچھ لے حاضر ہو ہم ان کی بارگاہ.